हम सब परमात्म प्रिय आत्माएं जिन आत्माओं को स्वयं परम आत्मा आकर पढ़ाता है, पढ़ाने के साथ साथ दिव्य गुणों की धारणा भी कराता है, अर्थात चरित्रवान भी बनाता है और साथ साथ कर्मातीत बनाकर अपने साथ अपने घर भी ले चलता है। तो पाप की पढ़ाई का लक्ष्य ही है कि जैसे बाप ऊंचते ऊंच है, महान ते महान है, ऐसे ही बाबा के बच्चे भी बाप समान ऊंचते ऊंच बन जाएं, महान बन जाएं। यही बाप पढ़ाई के द्वारा हम आप सब आत्माओं से चाहता है। बाप समान बनने के लिए चार सब्जेक्ट्स बाबा ने हम आप सब आत्माओं को दिए हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। हम सब आत्माएं चारों सब्जेक्ट्स में यथाशक्ति आगे बढ़ रहे हैं। ज्ञान भी समझ में आ गया है, योग भी यथाशक्ति लगाते हैं, धारणा भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं। लेकिन अभी बाबा क्या चाहता है? मेरे बच्चे ज्ञानी तो बने हैं, लेकिन ज्ञानी जीवन वाले बन जाएं। सिर्फ ज्ञानी नहीं, लेकिन ज्ञानी जीवन वाले बन जाएं, अर्थात उनके जीवन में ज्ञान समा जाए, हर कर्म ज्ञान स्वरूप होकर करें। योगी हम आप सब बने हैं, लेकिन बाबा चाहता है निरंतर योगी बन जाए, योग लगाने वाले, जोड़ने वाले नहीं, लेकिन निरंतर योगी। क्योंकि योग भी तीन प्रकार से है, एक है योग लगाना पड़ता है, एक है योग लगता है और एक है, निरंतर योग रहता है। पहली स्टेज है, योग लगाना पड़ता है, अर्थात जब बाबा का परिचय मिला, ज्ञान समझ में आया कि योग ही एक ऐसा साधन है जिससे हम आत्मा कर्मातीत बनकर अपने सब खातों को खत्म कर बाप के साथ घर चलेंगी, ऊंच पद पाएंगी। जब यह समझ में आया तो योग लगे या न लगे, लेकिन लगाने के पुरुषार्थ में जुट गए। तो एक स्टेज है, योग लगाना पड़ता है, लगे या न लगे लेकिन लगाना पड़ता है। दूसरी स्टेज है, योग लगता है, अर्थात जब योग के द्वारा कुछ अनुभव हो गया, प्राप्ति हो गई, फिर बाबा की याद आने लगी, योग में बैठे तो योग लगने लगा, मन बाबा की तरफ जाने लगा, तो दूसरी स्टेज है, अनुभव या प्राप्ति के कारण बाबा की याद आने लगी, योग लगने लगा। लेकिन जो चीज लगता है वो टूटता भी है, अर्थात अभी जुटता है अभी टूटता है। लेकिन आपकी योग की स्टेज चाहिए, निरंतर याद में रहें। तो निरंतर याद में स्थित रहना, यह बाबा अभी चाहता है। योग लगे और टूटे, फिर जोड़ो फिर लगे, यह स्थिति नहीं। लेकिन निरंतर आपका योग बाबा के साथ लगा रहे, ये बाबा चाहता है। तीसरी बात है धारणा। धारणा हम सब ने अवश्य किया है, लेकिन अभी धारणा मूर्ति नहीं बने हैं। बाबा चाहता है मेरे बच्चे इतनी धारणा कर लें जैसे मूर्ति धारणा मूर्त है, ऐसे मेरे बच्चे बन जाए। देखो मूर्ति जड़ है, मिट्टी का है, पत्थर का है, सोने का है, जो भी मूर्ति है जड़ है, लेकिन उस जड़ मूर्ति के द्वारा आत्माओं को वाइब्रेशंस के रूप में प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि वो धारणा मूर्त बन चुकी है। धारणा मूर्त का यादगार मूर्ति है। तो अभी बाबा चाहता है हम आप बच्चे भी धारणा मूर्त बन जाएं। चौथा है सेवा। सेवा हम आप सब करते हैं, लेकिन सेवा अर्थात आपके द्वारा दूसरों को कुछ प्राप्त हो, कुछ मिले, अनुभव हो, उसको कहा जाता है सेवा। जैसे मान लो किसी आत्मा को आपने बाबा का ज्ञान दिया, परिचय दिया, आपने दिया, लेकिन क्या उस आत्मा को मिला, अर्थात उस आत्मा को ऐसा अनुभव हुआ कि सचमुच परमात्म ज्ञान मिला है? अगर नहीं अनुभव हुआ तो आपने सेवा नहीं की, सिर्फ ज्ञान दिया बस। सेवा का अर्थ ही है सामने वाले को प्राप्ति हो, अनुभव हो, उसको कहा जाता है सेवा करना। सेवा करने से जिसकी सेवा की उसको भी प्राप्ति, और जिसने सेवा किया उसको भी संतुष्टता की प्राप्ति हो, इसको कहा जाता है सेवा करना। तो बाबा हम आप सबको इन चारों सब्जेक्ट्स में संपन्न देखना चाहता है, अर्थात बाबा चाहता है कि मेरे बच्चे चारों सब्जेक्ट्स में सदा संपन्न रहें, अर्थात एक रस रहें। क्योंकि जब संपन्न हैं तो और कोई रस की मार्जिन ही नहीं। जैसे देखो कोई मटका है पानी का या किसी चीज का, अगर वो फुल भरा हुआ है तो और किसी चीज की मार्जिन ही नहीं, क्योंकि भरा है। अगर थोड़ा भी खाली होगा तो और कोई चीज उसमें पड़ सकती है। तो जब आप संपन्न हैं, भरपूर हैं, तो एक रस अवस्था स्वतः हो जाएगी। तो एक रस अवस्था की प्राप्ति के लिए बड़ा सहज साधन बाबा ने दिया है, वो साधन है आप सब जानते भी हैं, वो साधन है अमृत वेले तीन स्मृतियों का तिलक लगाओ। शब्द जानते हैं आप अच्छी तरह से, वो तीनों स्मृति हैं स्वयं की स्मृति, बाबा की स्मृति और ड्रामा की स्मृति, जिसको बाबा कहता तीन बिंदियों का तिलक लगाओ। इन तीन स्मृति के आधार से आप स्वयं को संपन्न स्थिति में और एक रस स्थिति में रख सकते हैं। तो जब जानते हैं फिर क्यों नहीं हो पाता है। ये हर एक बच्चा बाबा की मुरली में कई बार सुन चुका है कि तीन बिंदियों का तिलक लगाओ, तीन स्मृतियों का तिलक लगाओ। तो स्मृति होते हुए फिर क्यों नहीं एक रस हो पाता है? इसका कारण है दो। एक कारण है स्मृति है लेकिन स्वरूप नहीं है। स्मृति अवश्य है लेकिन स्मृति स्वरूप नहीं है। दूसरा है स्मृति है लेकिन उस स्मृति के द्वारा कितनी ऊंची प्राप्ति है उस प्राप्ति का अनुभव नहीं है। एक स्मृति स्वरूप नहीं, दूसरा उस स्मृति से कितनी ऊंची प्राप्ति है उसका अनुभव नहीं। जैसे बाबा कहता है कि स्वयं को आत्मा समझो। बाबा कहता है हम आप सब जानते हैं कि हम आत्मा हैं, जानते हैं, लेकिन आत्म स्मृति है लेकिन आत्म स्वरूप नहीं है। तो स्वरूप न होने के कारण उससे जो प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। अगर प्राप्ति नहीं होती, महानता की अनुभूति नहीं होती, तो वो स्मृति भक्ति मार्ग वाली हो जाती। अर्थात जैसे भक्ति में टेम्परेरी टाइम के लिए खुशी कहो, शक्ति कहो, या मन की भावना कहो पूर्ण होती है, ऐसे यहां भी होता है। लेकिन प्रैक्टिकल में प्राप्ति नहीं होती है। यह स्मृति आना कि मैं आत्मा हूं, आत्मक स्वरूप में स्थित हो जाना। जैसे आप सब आत्मा के बारे में बताते हैं, आत्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, बताते हैं। तो क्या देखो बिंदु स्वरूप में स्थित है या आत्मा की महानता के बारे में देखो कि मैं आत्मा तो हूं लेकिन कौन सी आत्मा हूं? आत्मा तो सारे संसार की आत्माएं हैं, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूं? कोटि में भी कोई आत्मा हूं। जिस आत्मा को स्वयं परम आत्मा ने चुना है। जो आत्मा परमात्म दिल तख्त नसीन है, मैं वो आत्मा हूं जो परम धाम में मीठे बाबा के एकदम समीप रहती हूं, साथ साथ रहती हूं। मैं वो आत्मा हूं जो सर्व आत्माओं की पूज्य हूं, पूर्वज हूं। अपनी इस महानता की स्मृति में आओ। अगर ऐसी महानता की अनुभूति आत्मा को हो जाए, फिर आत्म स्थिति में स्थित रहना सहज हो जाएगा। लेकिन महानता की अनुभूति तब होगी जब आप स्वरूप में स्थित होंगे। तब आत्मक स्वरूप की स्थिति बनाने की विधि क्या है? कई ये प्रश्न पूछते रहते हैं कि आत्मक स्वरूप का क्या पुरुषार्थ करें। इसकी विधि एक तो यह है कि अमृत वेले योग के बाद आप कम से कम 5-7 मिनट खुद खुद से बात करो, जिसको कहा जाता है सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म बोध। किस विधि से? योग के बाद एकांत में बैठकर अंतर्मुखी होकर सोचो कि आखिरकार मैं हूं कौन? हूं तो ज्योतिर्बिंदु आत्मा, मुझ आत्मा ने ही तो यह शरीर धारण किया है। मैं आत्मा ही तो विशेष इस बात को अंतर्मुखी होकर सोचो कि मैं आत्मा ही तो परम धाम से उतरकर इस साकार सृष्टि पर आई हूं। मैं आत्मा ही तो शिव बाबा से वर्षा लेती हूं। मैं आत्मा ही तो 84 जन्मों का चक्कर लगाती हूं। अगर मैं आत्मा निकल जाऊं, ये शरीर जड़ हो जाएगा, मुर्दा हो जाएगा। मैं आत्मा ही तो इस आंख के द्वारा देखती हूं। मैं आत्मा हूं, चैतन्य हूं। ऐसे जितना गहराई से सोचेंगे उतना ज्यादा आपका जल्दी संस्कार बनेगा। तो 63 जन्म के जो देह भान के संस्कार हैं, फिर वो मर्ज होते जाएंगे और देही अभिमानी के संस्कार इमर्ज होते जाएंगे। तो अमृत बेले योग के बाद खुद खुद से बात करो। दूसरी बात, जब आप रात को सोने जाओ तो ऐसे ही बिस्तर पर जाकर सो नहीं जाओ, लेकिन किस विधि से सो, बाबा ने उदाहरण देकर बताया था कि जैसे एक ड्राइवर होता है, सारा दिन गाड़ी को चलाता है, शाम को गाड़ी को गैरेज में छोड़कर अपने बिस्तर पर कमरे में जाकर सो जाता है। ऐसे जब आप सोने जाओ तो चार पाई पर बैठकर अभ्यास करो, क्या कि मैं आत्मा हूं, मुझ आत्मा ने सारा दिन इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाया, आंखों के द्वारा देखा, हाथों के द्वारा काम किया आदि आदि। अभी मैं आत्मा इस शरीर रूपी गाड़ी को इस चार पाई रूपी गैरस पर छोड़कर मैं आत्मा अपने घर अपने बाप की गोद में विश्राम करने जा रही हूं। यही परम धाम तो मुझ आत्मा का असली घर है, मैं यहीं की रहने वाली हूं। यही तो मुझ आत्मा के सर्वस्व मीठा बाबा भी रहता है। बाबा, अब मैं आई हूं आपके पास, आपकी गोद में विश्राम करने। बाबा, आप कितने मीठे हो, कितने प्यारे हो बाबा, अब मैं आपकी गोद में विश्राम कर रही। ऐसे संकल्प करते करते अगर नींद आ जाए तो स्वप्न में साक्षात्कार हो जाएगा। और अमृत बेले जब आंख खुले, बाबा से गुड मॉर्निंग करके इस शरीर में प्रवेश करो। जैसे ड्राइवर कमरे से उतरकर गाड़ी में बैठकर गाड़ी को चलाता है, ऐसे आप संकल्प करो कि मैं आत्मा अपने घर से उतर कर इस गाड़ी में अपनी सीट पर बैठकर अब मैं गाड़ी को चला रही हूं। मैं आत्मा हूं, ज्योति स्वरूप हूं, शांत स्वरूप हूं। अब मैं आत्मा आंखों के द्वारा देख रही हूं, मुख के द्वारा बोल रही हूं। जिसको भी देखो ये भी आत्मा है, मुख के द्वारा बोल रही है, ये भी ज्योति स्वरूप है, ये भी प्रकाश स्वरूप है। ऐसे अमृत बेले आंख खुलते ही इस विधि से अभ्यास करो। तो अगर आदि और अंत दोनों अशरीरी भाव का अभ्यास होगा तो मध्य अर्थात बीच में ऑटोमेटिक रहेगा। इस प्रकार के अभ्यास से शॉर्ट कट है अशरीरी होने की विधि। इस विधि को अवश्य अपनाओ और करके देखो कितना सहज है। दूसरी स्मृति की बिंदी है परमात्म स्मृति। हम आप सब बाबा को याद तो करते हैं, योग माना ही बाबा की याद, लेकिन परमात्म स्मृति में सबसे बड़ी बात है कि बाबा जो है जैसा है वैसा समझकर उस स्मृति में रहना। जो है जैसा है वैसा समझकर उस स्मृति में रहना। जैसा है अर्थात ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, जो है आप सोचो कि भगवान कौन है। अभी संगम युग में भगवान हमारा बाप बन गया, इसलिए बाप साधारण हो गया। नहीं तो भगवान क्या है अगर वो पूछना हो तो आप अपने भक्ति मार्ग के जीवन से पूछो कि भगवान क्या है। भगत फिर भी भगवान की महिमा को जानते हैं, अनुभव नहीं है, जानते हैं, लेकिन आपको तो भगवान की महिमा का अनुभव है। लेकिन हम सब भगवान को साधारण समझ लेते, इसलिए बाप जो है जैसा है वैसा अगर समझ करके बाप की स्मृति लाओ तब निरंतर बाप की याद रह सकती है। एक छोटा सा उदाहरण बताते, हमने प्रैक्टिकल देखा। आप सबके जीवन में भक्ति काल का अनुभव होगा। एक बार एक कुछ वीआईपी आए हुए थे यहाँ, उस समय नवरात्रि का त्योहार चल रहा था, तो नवरात्रि पर कई लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं, ऐसा होता है। तो एक भाई था, उसका 9वां ही दिन था, व्रत रखा हुआ था, शायद लास्ट दिन में वो पानी भी नहीं उसको पीना था, निराजल व्रत रखा हुआ था। वीआईपी किचन के बाहर ही देखा होगा गोल गार्डन बना हुआ है, केले का पेड़ जैसे लगा हुआ है। वो वहां वो आ रहा था और वहीं बेहोश होके गिर पड़ा। तो जो भाई जो लेकर के आया था उस वीआईपी को, वो वहां बैठ करके उसका माथा ऐसे सहला रहा था। तो हमने पूछा इसे क्या हुआ है, तो बोला कुछ नहीं, इसे इसको चक्कर आ गया है। तो हम कहा अच्छा ठीक है, इसको थोड़ा पानी ले आओ, थोड़ा छींटे डालते हैं, कुछ मुंह में बाबा की याद का जल डालते हैं, ठीक हो जाएगा। तो भाई को बोला, वो पानी लेने गया, तो जैसे वो पानी लाया और हम उसके मुंह में पानी डालने के लिए मुंह ऐसे खोला, उसने ऐसे मुंह बंद कर लिया हाथ से। देखो मरने पर है लेकिन पानी नहीं पी रहा है, व्रत नहीं तोड़ रहा है, बेहोश है, मतलब होश है लेकिन जैसे अंतिम स्टेज लग रही, लेकिन पानी नहीं पी रहा है। देखो कितना भगवान क्या है वो जानता है। आखिरकार थोड़ी देर में रियल में बेहोश हो गया। फिर तो हॉस्पिटल लाए, ग्लूकोज चढ़ाया आदि, फिर उसके बाद में उसको होश आया। लेकिन पानी नहीं पिया, मर जाता लेकिन पानी नहीं पिया। भगवान क्या है जानता है, वो तो उनको डर है। भगवान की यथार्थ पहचान, भगवान क्या नहीं कर सकता है और एक सेकंड में क्या नहीं कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, बीज में सारी शक्तियां होती, लेकिन पहचान चाहिए। साधारण तन में आया, इसलिए पहचान न होने के कारण उसको यथार्थ नहीं पहचान पा रहे। जाना शिव भगवान है लेकिन यथार्थ नहीं पहचाना। जैसे छोटी सी बात पहचान की बताते हैं, एक भाई अभी यही है, जो थोड़ा पुराने होंगे जानते होंगे, एक बलदेव भाई है, साकार बाबा के समय का, जयपुर में था, अभी तो यही है। जब ब्रिज कोठी थी उस समय की बात है, बाबा सुबह क्लास के बाद निकला था, बाहर ऐसे एक थोड़ा सा चबूतरा था, वहीं खड़ा हुआ था बाबा। और थोड़ी देर में एक सांप आया, बाबा के पांव के ऊपर चढ़ गया। तो बाबा ने देखा कि सांप पैरों पे चढ़ा हुआ है, तो बाबा ने उस बलदेव भाई को बुलाया, बच्चा इधर आओ। आया, बोला देखो ये सांप को, बाबा ने कहा देखो ये बच्चा पैर पे चढ़ा हुआ है, इसको पकड़ के ले जाओ, दूध पिलाओ और बोतल में डाल के जंगल में छोड़ दो। तो जब बाबा ने उसे कहा तो वो बेचारा तो थोड़ा डर गया, भाई मुर्दा सांप भी पकड़ने में डर लगता है, जिंदा सांप पकड़ना कितना मुश्किल की बात है। तो उसने सोचा अच्छा चिमटा ले आया, कोई चीज ले आया, उससे पकड़े। وہ تھوڑے دیر سے سوچ رہا تھا، اتنی دیر میں بابا نے کہا، کون کہہ رہا ہے؟ تو جیسے بابا نے کہا کون کہہ رہا ہے، اسمرتی آ گئی اور اس نے بلدیو بھائی نے جا کے سانپ کو ہاتھ سے پکڑا، دودھ پلایا اور پھر اس کو چھوڑ کے آ گیا۔ تو پہلے نہیں پہچانا کون کہہ رہا ہے، جب بابا نے کہا کون کہہ رہا ہے، اسمرتی آئی، سرو شکتیوان پرماتما کہہ رہا ہے۔ اور اس اسمرتی سے شکتی آ گئی، بل آ گیا۔ کئی بار بابا کی مرلی میں آپ سنتے ہیں کہ ایک طرف اکچھوڑی سینا ہے، آپ کی طرف پانڈو پتی ہے، آپ کا کچھ نہیں ہوگا۔ کئی مرلیوں میں سنتے ہیں باپ چھتر چھایا بن جائے گا، کتنی بڑی باتیں، لیکن اس اسمرتی سے یتھارتھ پہچان کر اگر اسمرتی لاؤ تو بھگوان کی مہانتا کے آدھار سے اس کے پرتی آپ کا دل کا ریگارڈ جائے گا، دل کا پیار جائے گا۔ تو جہاں دل کا ریگارڈ ہے، پیار ہے، وہاں یاد سوتہ ہے۔ کسی کے پرتی ریگارڈ اس کی مہانتا کے آگے مستک سوتہ ہی جھکتا ہے۔ آج کل کے کلیوگی منسٹر یا کوئی بھی آ جائیں، آپ جانتے ہیں وہ کیا ہیں، لیکن پھر بھی پد کے کارن آپ پھر بھی ان کو نمسکار کریں گے ہی۔ ان کی پد، ان کا اونچا استھان دوسرے کا مستک جھکوا رہا ہے۔ تو بابا کتنا مہان ہے، بابا نہیں کہتا مستک جھکاؤ، لیکن دل کا پیار، دل کا ریگارڈ سوتہ ہی بابا کی طرف کھینچ رکھے گا۔ تو بابا کی مہانتا کو جانو، اس مہانتا سے اسمرتی سوروپ بنو تو بابا کی یاد رہ جائے گی۔ تیسری بات ہے ڈراما کو ہم سب روز سنتے ہیں اور جانتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو بیتا سو ڈراما، یا جو ہو رہا ہے سب اچھا ہو رہا ہے، یا جس نے جو کچھ کہا کیا ڈراما میں تھا۔ یہ ہم آپ سب جانتے ہیں، پھر بھی ڈراما کہتے ہوئے، جانتے ہوئے من وچلت کیوں ہوتا ہے؟ یہ تھوڑی سمجھنے کی بات ہے ڈراما کی، کیوں وچلت ہوتا ہے من، کیا کارن ہے؟ بولو، جانتے ہیں۔ جیسے مان لو کسی نے میرے اوپر غصہ کیا، یہ ڈراما میں اس کا پارٹ فکس تھا، اس بیچارے کو کرنا ہی تھا، جانتے کیا، پھر ہمارا من کیوں وچلت ہو جاتا ہے کہ اس نے غصہ کیوں کیا؟ جانتے ہیں پھر کیوں ہوتا ہے؟ نہیں سنائی پڑا؟ نشچے نشچے تو ہے آپ کو ڈراما پر، دیہ ابھیمان۔ اس کا کارن یہ ہے کہ آپ ڈراما لگاتے ہو، لیکن ڈراما لگانے کی پریکٹس बहुत समय से चाहिए। जैसे आप योग लगाने की प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिस करते 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 अंत में स्थित हो जाओगे, ऐसे ड्रामा भी लगाने का अभ्यास करो। छोटी छोटी बातों में ड्रामा लगाओ, लगाते लगाते फिर स्थित हो जाए। हम सब अभ्यास नहीं करते हैं, क्योंकि उस अभ्यास करके स्वरूप में लाना पड़ेगा। मान लो जैसे आपको बताया कि उसने क्रोध किया, अब मेरे मन में क्यों तुरंत उसका रिटर्न आ गया, क्योंकि मुझ आत्मा में पूर्व संस्कार भरे हुए, पहले के संस्कार भरे हुए। अब उसने अगर कहा, क्रोध किया और आप उस समय पुरुषार्थ करो, नहीं, इस आत्मा ने क्रोध नहीं किया, आत्मा तो शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, आत्मा तो सुख स्वरूप है, इसके ऊपर क्रोध का वार है, क्रोध भूत सवार है, इस भूत ने गुस्सा किया है। ये बेचारा ड्रामा के पार्ट के परबस है, इसको क्रोध करना मजबूरी है, करना ही पड़ेगा, क्योंकि ड्रामा में इसका पार्ट है। क्रोध किया हो सकता है, मैंने कभी इसको गाली दिया होगा, क्रोध किया होगा तो रिटर्न में इसने किया है, हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। ऐसे ऐसे पॉइंट ला करके अपने मन को स्थेरियम बनाओ। जब ऐसे अभ्यास करते रहो, तब अभ्यास करते 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 अंत में ड्रामा पर खड़े रह जाओगे, नहीं तो हिलते रहोगे। ड्रामा ड्रामा कहते रहेंगे और हिलते भी रहेंगे। दूसरी बात, ड्रामा में जब तीन बात का पक्का निश्चय हो, तब ड्रामा लग सकता है। वो तीन बात है, ड्रामा न्यायकारी है, ड्रामा कल्याणकारी है और ड्रामा एक्यूरेट है। जब ये तीन बातें हों, ड्रामा न्यायकारी है, ड्रामा कल्याणकारी है और ड्रामा एक्यूरेट है, जब यह पक्का निश्चय हो, फिर आपका ड्रामा लग सकता है। पहली बात न्यायकारी है, जो कुछ हो रहा है सत्य घटना है, ये होना ही था, कोई गलत नहीं हो रहा है। जैसे कई बार होता है ना, कोई मुझे गाली देता, मेरी गलती नहीं होती, कहती ये बात ठीक नहीं है, कोई न्याय नहीं है, ऐसा होना नहीं चाहिए। नहीं, जो हो रहा है न्यायकारी है। ड्रामा किसी का पक्ष नहीं लेता, न्यायकारी। ये अच्छी तरह से पक्का करो, जो मेरे सामने घटना दुख सुख की आ रही है, ये हमारे किए हुए कर्म का फल है, हम जानते नहीं लेकिन है। तो ड्रामा पहली बात न्यायकारी है, और दूसरा जो हो रहा है हमारे लिए कल्याणकारी, हमारे लिए, विश्व के लिए, राज्य के लिए, सबके लिए कल्याणकारी। ड्रामा का हर पार्ट कल्याणकारी है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, मान लो कोई बाबा का बच्चा अज्ञानी कोई कुछ करता है वो आपको दुख नहीं होता है, लेकिन जब अपना कोई कुछ करता है तो दुख होता है। अपना कोई कुछ करता है, बाकी जब तक कोई दूसरा कुछ कहे अज्ञानी तो दुख नहीं होता है। मान लो अपने ब्राह्मण बच्चों में कोई डिससर्विस करता है, मान लो आपको लगता है कि बहुत गलत कर रहा है, लेकिन डिससर्विस करना, बाबा कहता हर पार्ट कल्याणकारी है। क्या कल्याण है डिससर्विस करना? कर रहा है डिससर्विस कल्याण है या नहीं? डिससर्विस करना क्या कल्याणकारी है? आपकी राजधानी स्थापन हो रही है, राजधानी में हर प्रकार के बच्चे चाहिए, नौकर चाकर दास दासी चंडाल प्रजा सब। अब मान लो जिसका बहुत नीचा पद, मान लो चंडाल बनना होगा, तो जब चंडाल बनना है किसी को तो चंडाल बनने का कर्म अब करना पड़ेगा या नहीं? करना पड़ेगा ना, तभी तो चंडाल बनेगा। कर्म अच्छा करे और बने चंडाल, ये हो सकता है? नहीं ना। चंडाल पद कितना जरूरी है सोचो। जब महाराजा शरीर छोड़ेगा, दूसरे की बात छोड़ो, जब महाराजा शरीर छोड़ेगा तो सिवाय चंडाल के कोई टच नहीं करेगा। सोचो चंडाल पद कितना जरूरी है। और वो चंडाल पद बिना डिससर्विस किए हुए बनेगा कैसे? तो डिससर्विस कितना जरूरी है। इसलिए ड्रामा की हर सीन कल्याणकारी है। क्यों? क्योंकि आपकी राजधानी है। ऐसे नहीं कि डिससर्विस करनी है, नहीं, जो चंडाल बनेगा वो करे, आपको तो महाराजा बनना है। कहीं इसका उल्टा अर्थ नहीं ले लेना, लेकिन ड्रामा में जो भी पार्ट है सब कल्याणकारी है, हर चीज कल्याणकारी है। आप तो बाबा के मत पर चलकर, बाप के श्री मत पर चलकर, आप तो बाबा के दिल तक तनसीन बनो। और तीसरी बात है, ड्रामा एक्यूरेट है। जिस घड़ी एक सेकंड भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, जिस घड़ी जो होना है जिस प्रकार से होना है और जो हो रहा है बिल्कुल एक्यूरेट हो रहा है, एक सेकंड का भी फर्क नहीं है। तो जब तीन बातें ड्रामा में पक्का निश्चय हो, न्यायकारी, कल्याणकारी और एक्यूरेट, फिर ड्रामा की ढाल लग सकती है। तो आत्मा, परमात्मा और ड्रामा, इन तीन स्मृतियों का अमृत वेले विशेष तिलक लगाओ कि जो कुछ हो रहा है एक्यूरेट अच्छा हो रहा है। हमें क्या करना है? जो हो रहा है वो तो सब ठीक हो रहा है, जिसको चंडाल का पद पाना होगा वो डिससर्विस करेगा। हमें क्या करना है? हमें बाबा के श्रीमत पर चलकर, बाप समान हमें बनना है। जैसे बाबा कहता है वैसे मुझ आत्मा को बनकर दिखाना है। यह है एक रस स्थिति का साधन। जब एक रस बनो तब एक बाप की निरंतर याद में स्थित हो जाओ, फिर सहज बाप के साथ चलोगे और एक बाप की याद में रहने वाला एक नंबर में अवश्य आएगा। अच्छा, ओम शांति।